विद्यार्थियों, बाल महाभारत में अभी तक आपने पढ़ा कौरव और पांडवों ने चौसर का खेल खेला, माने जुआ खेला। उसमें पांडवों की हार हुई और पांडवों को वनवास जाना पड़ा। फिर दुर्योधन की इच्छा हुई कि पांडवों को कष्ट में देखें, इसके लिए उसने अपने साथियों से, जिसमें कर्ण और शकुनी, से सलाह की कि कैसे हम पांडवों की दुर्दशा देख सकते हैं। इसके लिए वह द्वैत वन में गया। वहाँ वह पांडवों को तो नहीं देख सका, लेकिन वहाँ पर गंधर्वों के साथ उसको युद्ध करना पड़ा। उसमें पूरी तरह पराजित हुआ। आखिर में भीम और अर्जुन ने उसे छुड़ाया और बहुत अपमानित होकर दुर्योधन हस्तिनापुर वापस आया। हस्तिनापुर आकर उसने दुर्वासा ऋषि को खुश कर लिया और उन्हें पांडवों के पास इस उद्देश्य से भेजा कि दुर्वासा ऋषि रुष्ट हो जाएं और पांडवों को कोई श्राप दें। लेकिन श्री कृष्ण के सहयोग से पांडवों पर कोई विपत्ति नहीं आई। यहाँ तक आपने पढ़ा है। अब आगे हम मायावी सरोवर और यक्ष प्रश्न पढ़ेंगे। ये दोनों पाठ वास्तव में एक ही हैं, आपकी सुविधा के लिए अलग अलग लिख दिए गए हैं। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने वाली थी और पांडव एक जंगल में निकल आए थे। वे बहुत थक गए थे तो एक जगह सुस्ताने के लिए बैठे, माने सुस्ताने माने आराम करने के लिए बैठे। युधिष्ठिर ने अपने सबसे छोटे भाई नकुल से कहा, नकुल बहुत प्यास लगी है, देखो आसपास कोई जल का स्थान, नदी या तालाब हो। नकुल ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा तो वो देखता है कि आस थोड़ी ही दूर पर कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं। उसने अनुमान लगा लिया कि उसके आसपास अवश्य ही कोई जलाशय होगा। नकुल वहाँ पानी लेने के लिए गया। जैसे ही वह जलाशय के पास पहुँचा और अपनी अंजलि में, अंजलि कहते हैं दोनों हाथ को मिला करके, इसको अंजलि कहते हैं, तो पानी, जैसे ही वो पानी भरने लगा कि जलाशय से एक आवाज आई, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर तुम पानी पी सकते हो। नकुल ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। जैसे ही उसने पानी पिया, थोड़ी दूर गया कि वहाँ जाकर अचेत होकर के वह गिर पड़ा। बहुत देर तक जब नकुल नहीं पहुँचा तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, सहदेव जाकर देखो नकुल अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। सहदेव जैसे ही जलाशय के पास पहुंचा, उसे भी बहुत तेज प्यास लगी थी, वह भी पानी पीने उतर गया। उसे भी पहले जैसी आवाज़ सुनाई दी, उसने भी ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया और चलते चलते नकुल के पास जाकर वह भी गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं आया तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने देखा कि सरोवर के किनारे उसके दोनों भाई मृत से पड़े हैं तो वह चौंक गया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि मेरे प्रश्न को उत्तर दिए बिना यदि तुमने पानी पिया तो तुम्हारा भी इन्हीं भाइयों जैसा हाल होगा। अर्जुन को बहुत क्रोध आया और उसने जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ बाण छोड़ने शुरू किए। उसने बहुत सारे बाण छोड़े लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब अर्जुन ने सोचा पहले पानी पी लूँ, पानी पीने के बाद फिर युद्ध करूँगा। पानी पीते ही अर्जुन भी अचेत होकर गिर पड़े। फिर युधिष्ठिर को चिंता हुई, तब उन्होंने भीम को पता लगाने के लिए भेजा। भीम वहाँ पहुँचे तो वो समझ गए कि निश्चित रूप से यह कोई यक्ष की करतूत है, मतलब ऐसा काम कोई यक्ष ही कर सकता है। उसने यक्ष का सामना करने की सोची लेकिन उसके पहले सोचा प्यास तो बहुत तेज लगी है, क्यों नहीं पहले पानी पी लो फिर देखता हूँ। जैसे ही उसने पानी पिया और वह भी अचेत होकर गिर गया। अब युधिष्ठिर और भी ज़्यादा परेशान हो गए, सोचने लगे हमारे चारों भाई नहीं आए, क्या हुआ, मैं कुछ चलकर देखता हूँ। युधिष्ठिर जब जलाशय के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने अपने चारों भाइयों को देखा कि मरे पड़े हैं, बिलौने लगे, बहुत दुखी हुए, प्यास से तो व्याकुल पहले से ही हो रहे थे। फिर विचार करने लगे ऐसा क्या हुआ होगा कि हमारे चारों भाई मरे पड़े हैं। उनके पास जाकर उस युधिष्ठिर ने देखा तो कहीं कोई चोट के निशान नहीं थे। जलाशय के पास आए, सोचने लगे कि हो सकता है ये दुर्योधन की कोई चाल हो, कि दुर्योधन ने इसमें कोई जहर वगैरह मिला दिया हो। जैसे ही युधिष्ठिर जलाशय के पास आए उन्हें फिर वही आवाज़ आई। युधिष्ठिर ने धैर्य से कहा आप अपने प्रश्न कीजिए, मैं उनके उत्तर दूंगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न किए, वे प्रश्न उनके व्यक्तिगत नहीं थे, मतलब युधिष्ठिर से या युधिष्ठिर के परिवार से संबंधित प्रश्न नहीं थे, समाज के सामान्य ज्ञान के, सामाजिक जीवन के प्रश्न थे। इन प्रश्नों के उत्तर में जीवन की शिक्षा है। युधिष्ठिर ने जो कहा है वह सूक्ति वाक्य के रूप में आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कुछ प्रश्न आप देखिए कैसे हैं। यक्ष ने पूछा मनुष्य का साथ कौन देता है। आप सोच सकते हैं मनुष्य का साथ कौन देता है, तो हमें लगता है हमारे मित्र, माता पिता। लेकिन युधिष्ठिर ने जवाब दिया धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है, मतलब धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। अभी देखिए चारों भाई धैर्य से दूर हटे, धैर्य से उन्होंने काम नहीं लिया तो मर गए। युधिष्ठिर ने धैर्य से काम लिया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरा प्रश्न यक्ष ने किया, वह कौन सा शास्त्र है या कौन सी विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है, केवल महान लोगों की संगति, महान लोगों की मतलब महापुरुषों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। फिर प्रश्न किया, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, संतान को अपने पेट में रखने वाली माता भूमि से भारी होती है। युधिष्ठिर के प्रश्नों के सिद्धांत वाक्य इस प्रकार होंगे, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन हवा से भी तेज चलने वाला है, चिंता घास से भी जल्दी आग लगाने वाली है, विदेश जाने वाले का साथी विद्या होती है, दान मरणासन्न व्यक्ति का मित्र होता है क्योंकि मृत्यु के बाद जीव के साथ वही चलता है। यहाँ दान से मतलब हमारे सद्कर्म, अच्छे कर्म जो हैं वही हमारे साथ चलते हैं, घर परिवार के लोग धन संपत्ति यह हमारे साथ नहीं जाती है। अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है, सर्वप्रिय में सबका प्रिय हो जाता है, अहम होता है तो लोग उससे दूर भागते हैं। क्रोध के खो जाने पर दुख नहीं होता है और लालच को गंवाने के बाद मनुष्य धनवान बनता है और आखिरी में यक्ष ने प्रश्न किया, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, प्रतिदिन आंखों के सामने कितने ही लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद भी बचे हुए लोग यह सोचते हैं कि वे अमर होकर आए हैं और अपने जीवन को सुधारने के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं और जीवन में सब कार्यों में लगे रहते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर के प्रश्नों से यक्ष संतुष्ट हुए और उन्होंने फिर एक परीक्षा ली। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारे उत्तरों से मैं संतुष्ट हूँ, इससे खुश होकर मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूँ, बोलो किसको जीवित करूँ? युधिष्ठिर ने कहा, आप नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, युधिष्ठिर तुमने हजार हाथियों के ताकत वाले भीम को नहीं चुना, धनुर्धारी अर्जुन को नहीं चुना, तुम नकुल को क्यों जीवित करवाना चाहते हो? तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हे यक्षराज, मेरी दो माताएं थीं, कुंती माता का पुत्र मैं जीवित हूँ, इसलिए मैं अपनी दूसरी माता माद्री के पुत्र नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ, जिससे हम दोनों माताओं के पुत्र जीवित रहें। इससे खुश होकर यक्ष जो स्वयं धर्मराज थे प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने पांचों पांडवों को मतलब बचे हुए चारों को जीवित कर दिया और युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और इस तरह भी वहां से चले गए। अभी पांडवों को एक चिंता हुई कि हमारे वनवास का समय तो पूरा हो गया है, अभी अज्ञातवास का एक साल बाकी है, तो अज्ञातवास का एक साल कहाँ बिताया जाए। तब उन्होंने सोचा कि मत्स्य देश में राजा विराट हैं, शक्तिशाली भी हैं, और यदि दुर्योधन की बातों में नहीं आएंगे तो वहीं जाकर हमें अपना अज्ञातवास बिताना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।